हर चीज के ऊपर श्री चैतन्य महाप्रभु ने विस्तृत में व्याख्या, उनका सारा सिद्धांत, सारा सार निचोड़ इन पांच भावों के द्वारा सब हमको दे दिए। यानी दूसरे शब्दों में बोला जाए, सिद्धांत अगर कोई जानना चाहता है उनको केवल श्री चैतन्य महाप्रभु का इन पांच भावों के साथ संवाद को अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। और श्री चैतन्य महाप्रभु जिन जिन श्लोकों को, जिन जिन चीजों को उन्होंने व्यक्त किया है पांच भावों के संवाद के द्वारा, उनको अगर केवल एक बार याद भी रख लेता है उन पॉइंट्स को, तो सब कुछ उनको कुछ और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है वैदिक साहित्य में। जहां तक सिद्धांत का सवाल है, हर एक चीज इसमें हमको प्राप्त होता है टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य में। वेदों के जो सूक्ष्म विचार है, जो सूक्ष्म तत्व है अलग अलग सिद्धांत के ऊपर, ये सारे सिद्धांतों को उन्होंने इन पांच लोगों के संवाद में हमको प्रदान किया है। तो वैसे ये टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य के ऊपर हम बहुत बार या पिछले 6-7 साल से कर रहे हैं, लेकिन हर बार अंग्रेजी में करते हैं, इधर उधर कभी दो बार जो भी कर चुके हैं और दो बार यूरोप में किए हैं, पहली बार इस बार हिंदी में हम प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सिद्धांतिक तत्व होते हैं, उसको थोड़ा सा प्रस्तुत करने में हमारे अंदर कमियां महसूस हो सकता है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे इस प्रकार की कमियां ना हो, क्योंकि हम इन चर्चाओं में, इन शिक्षाओं में ऐसे ऐसे सूक्ष्म विचारों के ऊपर या चर्चा करेंगे जो साधारणतः हम साधारण प्रवचनों में चर्चा नहीं किया जा सकता है या चर्चा नहीं करते या हमको प्राप्त नहीं होता है। तो आज हम एक परिचय के रूप में कुछ ऐसे श्लोकों को हमने चुना है जो श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में है, तो ये श्लोकों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये श्लोक हम हर रोज उच्चारण करने वाले आज से, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में अगर कोई व्यक्ति जानना चाहता है या बोलना चाहता है उनको कम से कम इन श्लोकों को याद रखना होगा, इन श्लोकों को जानना बहुत आवश्यक है। इससे पहले हम इन श्लोकों को थोड़ा बहुत उसको परिचय मात्र देंगे, तो आज का क्लास में हम श्री चैतन्य महाप्रभु का परिचय ले रहे, वो कौन है और अस्तित्व में उन्होंने अपनी शिक्षाओं में क्या क्या प्रदान किया है, वो एक ओवरव्यू टाइप हम जो आगे जो चर्चा करने वाले 8 दिन में इनका एक प्रकार का ओवरव्यू, एक कैसे हम लोग या क्या करने वाले हो सब इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे हमने बताया कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये पांच लोगों के द्वारा सारे संसार को सारा वैदिक ज्ञान सिद्धांत प्रदान किया है, तो वेदों में जाने लाए बातें केवल 3 चीजें हैं, या हाँ सारे वेदों में केवल 3 चीजें हैं, या सारे वेदों के श्लोकों को अगर विभाजन करना चाहते हो तो वो 3 विभाग कर सकते हो। क्या है वो? एक है संबंध ज्ञान, दूसरा है अभिधेय ज्ञान और तीसरा है प्रयोजन। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये 3 शब्दों को हमारे मन में बैठा लेना चाहिए, क्योंकि जब तक हम इन 3 शब्दों को या 3 चीजों को बारे में नहीं जानते, 3 शब्दों को हमारे मन में नहीं बैठाते, वैदिक सिद्धांत के अंदर प्रवेश कर ही नहीं सकते। ये वैदिक सिद्धांत का या खजाना खोलने का जो चाबी है, वो चाबी इन 3 चीजों है। क्या है वो? संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो आप बोल सकते हो ये तो वेदांत सूत्र बहुत गहरा है, बहुत सूक्ष्म है, तो बुद्धिमान लोगों के लिए है, अरे हम तो कलयुग के जीव है तो कैसे समझ सकते हैं कि क्या फायदा है, इन श्लोक बोल सकते हैं। लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी हर अध्याय के पहले, खास करके पहले आदि खंड में, आदि लीला में, चैतन्य चरितमृत की आदि लीला में, हर अध्याय की शुरुआत में पहला श्लोक में इस प्रकार की बात कहते हैं, बोलते हैं कि श्री चैतन्य प्रभु मंदे बालो के तनुग्रहा तारे नाना मदक्षुराहा सिद्धांत व्याप्तम सिद्धांत सारम। बोलते हैं कि श्री चैतन्य प्रभु मंदे, मैं श्री चैतन्य महाप्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। क्यों प्रणाम करता हूँ? क्योंकि वो बालोपी अनुग्रहात, अगर उनके अनुग्रह कोई व्यक्ति प्राप्त करता है, श्री चैतन्य महाप्रभु अनुग्रह कोई व्यक्ति प्राप्त करता है तो क्या होगा? तारे सिद्धांत सागर, ये जो सिद्धांत का जो सागर है उसको पार कर सकता है। ठीक है, क्रॉस ओवर द ओशन ऑफ सिद्धांत, तारे सिद्धांत सागर बालोप्य अनुग्रह भगवान के अनुग्रह जी चैतन्य श्री चैतन्य महाप्रभु का अनुग्रह से एक बाल यानी एक छोटा सा बालक भी यानी एक मूर्ख व्यक्ति भी मूर्ख को भी एक मूर्ख व्यक्ति भी ये सिद्धांत के सारों को पार कर सकता है। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु का आश्रय ग्रहण कर सकता है जो सबसे जो जटिल सिद्धांत के तत्व है उन सब सब तत्वों को इतना आसानी से समझ सकता है कि बड़े बड़े विद्वान लोग बड़े बड़े पंडित लोग भी हैरान हो जाते हैं अरे कैसे जानते हैं इस बात इन सब चीजों को तो अरे हम तो बहुत सारे वेदाध्ययन के द्वारा बात भी हम नहीं समझ पाते आप इतना सरल तरीके से कैसे बता पा रहे हैं बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इसका कारण क्या है क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रभाव हुआ है इसलिए बोलते हैं कि व्याप्तम सिद्धांत सागर में सिद्धांत सारे में नाना प्रकार के मत ग्रह है सब की ग्रह के बराबर तुलना किया गया है सर अलग अलग प्रकार के मतों को जो भ्रांति का मत है वो भी वेदों में प्रस्तुत किया है वेदों के नाम के ऊपर अलग अलग लोगों ने प्रस्तुत किया है ये भ्रांति का मतों को पार करके तार कर सकते हैं तब तार कर सकते हैं हम लोग अगर श्री चैतन्य महाप्रभु पार है तो मूर्ख व्यक्ति भी बच्चा भी पार कर सकता है बच्चा भी सिद्धांत को जान सकता है अगर श्री चैतन्य महाप्रभु कृपा नहीं है भले वो कितना ही पंडित हो बड़ी कितना भी कोई व्यक्ति विद्वान क्यों ना हो ये सिद्धांत का जो सागर है वो पार नहीं कर सकता है। तो इससे मालूम पड़ता है कि अगर वेदों को जानना है या वैदिक सिद्धांत के अंदर प्रवेश करना है वो किस प्रवेश का किस दृष्टिकोण से जानना होगा हमको ये तीन बातों को हमेशा ध्यान में रखना होगा क्या है वो संबंध अभिधेय और प्रयोजन ऐसा लग सकता है ये तीन शब्द सुन के अरे तो क्या क्या भाई तो गलत जगह आ गए शांति से बैठ के हम सादा सादा प्रवचन सुनते तो अच्छा था ये क्या संबंध क्या है अभिधेय क्या है प्रयोजन क्या है ये तो वैसा लगता है कि ये तो पीएचडी वालों के लिए है हम तो इस प्रकार नहीं है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ये बहुत सरल है। संबंध मतलब क्या है संबंध मतलब मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है संबंध ज्ञान वेदों में कुछ श्लोक है या कुछ अंग है जो ये संबंध ज्ञान के को घोषणा करता है सूचित करता है। दूसरा है अभिधेय ज्ञान अगर भगवान के साथ हमारा संबंध है उनको पुनर्स्थापन करने की विधि क्या है प्रतिक्रिया क्या है व्हाट इज द प्रोसेस इज कॉल्ड अभिधेय भगवान के साथ भूला हुआ संबंध को पुनर्स्थापन करने की जो विधि है उसको क्या बोलते हैं उसको अभिधेय बोलते हैं। तो एक है संबंध दूसरा है अभिधेय और तीसरा कौन सा है प्रयोजन ठीक है। और संबंध के द्वारा हमको कुछ प्राप्त होता है क्या चीज प्राप्त होता है प्रेम प्राप्त होता है प्रेम प्रयोजन रिजल्ट क्या है कोई कुछ कार्य करने से हमको कुछ ना कुछ रिजल्ट होना चाहिए वो क्या है वो रिजल्ट तो क्या है वो प्रयोजन ये कार्य करने से क्या प्राप्त होगा ये विधि पालन करने से मुझे क्या प्राप्त होगा ये अभिधेय के द्वारा हमको अंत में क्या रिजल्ट आने वाला है उसको प्रयोजन किया जाता है। तो इस प्रकार ये तीन बातें तो ये तीन चीजों को संबंध ज्ञान को अभिधेय को और प्रयोजन को श्री चैतन्य महाप्रभु सारे संसार को प्रकाशित करते हैं किस रूप में प्रकाशित करते हैं किन 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 के द्वारा प्रकाशित करते हैं ये पांच लोगों के द्वारा प्रकाशित करते हैं ये पांच लोगों के संवाद के द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु ये तीन प्रकार के ज्ञान को प्रकाशित करते हैं। तो आप बोल सकते हो ये ऐसा कैसे कि तीन प्रकार के ज्ञान और पांच लोगों के साथ तो जगता नहीं है तीन और पांच तो अलग अलग प्रपोर्शन तो बैठता नहीं है ये कैसे हो सकता है ये इस प्रकार है ये संबंध ज्ञान का जो चर्चा है श्री चैतन्य महाप्रभु सारे संसार को सनातन गोस्वामी के साथ संवाद में उन्होंने सारे संसार को प्रकाशित किया है। अगर कोई व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु और सनातन गोस्वामी के संवाद सुनता है उसके बारे में पढ़ता है तो क्या मालूम पड़ रहा है संबंध ज्ञान मालूम पड़ रहा है। तो द नॉलेज ऑफ संबंध इज रिवील्ड टू द होल वर्ल्ड इन द डिस्कशन बिटवीन श्री चैतन्य महाप्रभु एंड सनातन गोस्वामी तो यह है संबंध ज्ञान। और श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी बात के बीच में जो संवाद है वो संवाद के द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु सारे संसार को क्या ज्ञान प्रदान कर रहे हैं प्रयोजन ज्ञान या सॉरी अभिधेय ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। अभिधेय मतलब क्या है अभिधेय मतलब प्रोसेस किस प्रकार हमारा भगवान के साथ बोला हुआ संबंध को पुनर्स्थापन कर सकते हैं द रिलेशनशिप विच हैज बीन फॉरगॉटन हाउ टू रीएस्टैब्लिश द रिलेशनशिप यानी ये जो अभिधेय ज्ञान है विधि है किस प्रकार हमको क्या क्या चीजें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सब चीजें श्री चैतन्य महाप्रभु और रूप गोस्वामी का संवाद में हमको प्राप्त होता है। तो अभी बचा तीसरा कौन सा है, प्रयोजन ज्ञान बचा है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय के बीच में जो चर्चा है, ये जो चर्चा है ये प्रयोजन ज्ञान को सारे संसार में प्रचार करता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने घोषणा किया प्रयोजन ज्ञान होता क्या है। तो आपने बोला वेदों में खाली तीन चीजें है, संबंध, अविधेय और प्रयोजन, तो आप ऐसा क्यों, अभी तो पांच बोल रहे, तीनों के तीनों फिर हो गए, दो बाकी तो कहां से आ गए, एक है राम सारण भट्टाचार्य और प्रकाश आनंद सरस्वती। तो श्री चैतन्य महाप्रभु और सारण भट्टाचार्य के संवाद और प्रकाश आनंद सरस्वती संवाद जो है ये कहां से हो गया अचानक से, इनको कहां फिट करे। तो इधर ऐसा है कि कोई व्यक्ति बोलता है कि संबंध ज्ञान के बारे में कोई चर्चा करता है, ठीक है भगवान के साथ हमारा संबंध है, तो व्यक्ति बोलता है, तो उसका निचोड़ यह है कि हमारा भगवान के साथ संबंध दास के रूप में है, हम भगवान के दास में के है, क्योंकि कोई व्यक्ति बोलता है, तो व्यक्ति बोले बताओ ऐसा क्यों है, उसका प्रश्न का जवाब दो, खाली बोलने से नहीं होगा, यानी उसके ऊपर विचार, क्यों हम भगवान के दास होने कोई और क्यों नहीं है, इसके ऊपर जो विचार है संबंध ज्ञान का जो विचार है, संबंध विचार, ये जो विचार जो है श्री चैतन्य महाप्रभु और सारो भट्टाचार्य के बीच में संवाद के द्वारा संबंध विचार, संबंध ज्ञान के ऊपर विचार जो है वो चर्चा किया गया है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कोई भी प्रश्न उठाएगा उस प्रश्न का सारा जवाब पहले श्री चैतन्य महाप्रभु दे चुके हैं। और अभिनय विचार, कोई व्यक्ति बोलता है कि बस भक्ति करो उसके अलावा उसके और कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो व्यक्ति बोलेगा क्यों, तब उसके ऊपर विचार करना होता है। तो ये अभिनय विचार जो है वो श्री चैतन्य महाप्रभु और प्रकाश आनंद सरस्वती के बीच में जो संवाद हुआ उन संवाद के द्वारा हमको प्राप्त होता है। तो तब बोल देते हो ठीक है आपने संबंध विचार बोला, अभिधेय विचार बोला, तो प्रयोजन विचार, कि प्रयोजन विचार का कुछ होता नहीं है, प्रयोजन का अनुभव इसके ऊपर विचार किया, अनुभव के ऊपर कोई विचार नहीं होता, कृष्ण प्रेम प्राप्त किया अनुभव हो रहा है, आनंद का अनुभव हो रहा है, उसके ऊपर कोई विचार नहीं किया जाता, विचार आता। तो इसलिए ये पांच लोगों का जो संवाद है, खास करके आपके जिनके पास टीचिंग से लॉर्ड चैतन्य है, आप जरा घर में जाकर खोल के देखिए उसके अंदर इंडेक्स है, आप देखिए सबसे पहला रहेगा रूप गोस्वामी, बाद सनातन गोस्वामी, इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु का इन पांच लोगों का नाम उधर है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, प्रकाश आनंद सरस्वती, सारण भट्टाचार्य, रामानंद राय, केवल इन लोगों का चर्चा ही वो इंडेक्स में पता लग जाएगा। तो इसलिए हम इस कोर्स का नाम टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य तो रखे ही है, लेकिन असल में क्या रखे उसका नाम, द फाइव ग्रेट डिस्कशंस, क्योंकि थोड़ा सा लोगों को पता लगे कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन पांच लोगों के साथ संवाद किया है, इन संवाद में इन लोगों के बीच में जो चर्चा है इसमें सब कुछ जो भी वैदिक है, आप कुछ भी बोलो कोई भी सिद्धांत लेके आओ उसके अंदर है, इसको असली सिद्धांत को स्थापना किया है और जो गलत सिद्धांत को खंडन किया गया है। दो चीजें होता है, एक है स्व मत स्थापना और दूसरा है परम मत खंडन। स्व मत स्थापना मतलब क्या है, अपना जो मत है, अपना मत मतलब क्या है, भक्ति का मत है, उसको स्थापना किया जाता है, और दूसरा क्या है परम मत खंडन, यानी जो गलत सिद्धांत है उसको खंडन किया जाता है। जो व्यक्ति ये पांच संवादों को अच्छी तरीके से जान लेता है, अच्छी तरीके से समझ लेता है और उसके ऊपर विचार करते हुए, निचोड़ करते हुए कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों को याद रख लेता है और बार बार इन पांच संवाद के ऊपर मनन करता है, तो क्या होता है, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है जिनको वो काट नहीं सकता है, वो उसके सामने ऐसा लगता है कि अरे ये तो इसका जवाब तो फटाक से आ जाता है, ये बहुत ये चीज है। इसलिए हम देखते हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण वाहन संघ के साथ जुड़े हुए भक्त लोग अगर थोड़ा सा श्रद्धा के साथ श्री प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ लेता है और टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य खास कर जो पढ़ लेता है, तो कैसे भी प्रकार का प्रश्न क्यों ना हो तो तुरंत जवाब जो है वो इट विल बी द फिगर टेस्ट, वो मुंह पे रह जाता है उसका जवाब, वो व्यक्ति हैरान हो जाता है हर चीज का जवाब कहां से प्राप्त हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो तो ऐसा लगता है कि सब रेडीमेड है, ये सही बात है, सब रेडीमेड है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने सब रेडीमेड जो आंसर है वो सब टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य भर के रखे। एनी क्वेश्चंस यू आर रेडीमेड आंसर फॉर इन टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। तो इससे बोला गया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु मंदिर, मैं श्री चैतन्य प्रभु को महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि एक बालक भी, बालक मतलब ये नहीं कि बस 5 साल का बालक, 6 साल का बालक, जो सिद्धांत की अध्ययन में जो बालक है, सभी बालक है, भले 30-40 साल 50 साल हो गया, फिर भी हमने तो अभी अभी शुरू किया है भक्ति, अभी 2 साल पहले 3 साल पहले कोई शुरू किया, कोई 10 साल पहले भी किया होगा, तभी वो भी बालक है, जस्ट स्टार्टेड डिवोशनल लाइफ। तो वो बालक भी वो सिद्धांत साधन को स्वयं हमको अनुभव है। जब पहली बार हमने भगवद गीता पढ़ा था प्रभुपाद जी का, तो बहुत अच्छा लगा, मैंने सोचा कि ये भी बहुत अच्छा ग्रंथ है प्रभुपाद जी ने निकाल दिया, और भी कोई और आध्यात्मिक ग्रंथ है ये भी अच्छा है, कोई और संप्रदाय का भी है ये भी अच्छा है। ऐसे पढ़ते पढ़ते छोटा किताब सब खत्म किया, लेकिन जब टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य हमने एक बार पढ़ा, जैसे पढ़ने के बाद पूरा एक हफ्ते में सब पूरा हर पेज सब कुछ ऐसे पढ़ने के लिए पढ़ा, और कुछ समझ में आया कुछ समझ नहीं आया अलग बात है, लेकिन वो पढ़ने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अगर कोई सिद्धांत है इस संसार में टॉप मोस्ट फिलॉसफी अगर कुछ है वो इसी के अंदर है, ये हमारा खुद का अनुभव कोई भूला भी नहीं है, बारे में पता लगा ठीक है ये तो टॉप मोस्ट फिलॉसफी है करके, ठीक है। तो हम अभी तक चर्चा किया कि वेदों में 3 बातें हैं, क्या क्या है वो, संबंध अभिधेय प्रयोजन, और सनातन गोस्वामी पाद के चर्चा में संबंध ज्ञान को प्रकाशित करते हैं, रूप गोस्वामी पाद की चर्चा में श्री चैतन्य महाप्रभु अभिधेय ज्ञान को प्रकाशित करते हैं, और रामानंद राय संवाद में श्री चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं वो प्रयोजन ज्ञान को प्रकाशित करते हैं, और सारमठाचार्य के साथ संवाद में वो संबंध विचार को प्रकाशित करते हैं, और संबंध विचार करते हैं संबंध ज्ञान का विचार करते हैं, और प्रकाश का संवाद में क्या करते हैं वो अभिधेय विचार को करते हैं। तो ये संबंध अभिधेय और प्रयोजन ये तीनों के 3 मंत्र भी है, 3 श्लोक भी। तो संबंध ज्ञान का जो मंत्र है वो है जयताम सुरतो मंगुर भवमंद मते गति मत सर्वस्व पदाम बोधु राधा मदन। अभी क्या है हमारा गलत लोग के साथ संबंध है, सोचते कि यार ये मेरा ही में मेरा घर है, मेरा भाई है, मेरा वो है, मेरा ये है, तो हम अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग चीजों के साथ संबंध बनाते रहते हैं, हमें हमारा आकर्षण जो है इन लोगों के प्रति है, तो इसलिए प्रार्थना में करते हैं भगवान को कृष्ण को इस रूप में मदन मोहन के रूप में करते हैं, मदन मोहन मतलब मदन को भी आकर्षित करने वाले, इतने सुंदर है भगवान। तो वैसे जो सुंदर भगवान को प्रार्थना करते हैं मदन मोहन आप सबसे आकर्षित हो, मदन को आकर्षित कर सकते हो, और मैं जो है नाना प्रकार की मदन के अलग अलग स्वरूपों के प्रति आकर्षित हो, तो मेरी ये मंद मति है उसको जरा समझाइए कि इन सब चीजों में कुछ रखना नहीं है, आप जो मदन मोहन है तो आपके प्रति मेरा आकर्षण बढ़ाइए। इस प्रकार जय नाम सुनो तो ताकि मेरे जो रति है आपकी रति बढ़े, और बाकी सब ये जो संसारिक चीजें इनके प्रति रति मेरा कम हो। तो इसलिए ये संबंध प्रणाम मंत्र है, संबंध ज्ञान का प्रणाम। तो संबंध मंत्र ये है, तो संबंध आचार्य कौन हुए संबंध ज्ञान का, सनातन गोस्वामी है संबंध आचार्य, सनातन गोस्वामी संबंध आचार्य है, संबंध प्रणाम मंत्र ये है, जय काम जो दो पंगो नो मंत्र मते रे मत सर्वस्वदा मुझु राधा मोहन मदन मोहन ये, और संबंध विग्रह कौन है श्री श्री राधा मदन मोहन जी। तो संबंध आचार्य राधा सनातन गोस्वामी, और संबंध ज्ञान के जो अधिष्ठान देव कौन है मदन मोहन जी। अभी अगर वृंदावन जाएंगे तो मदन मोहन जी के विग्रह को कौन पूजा करते थे, सनातन गोस्वामी पूजा करते थे, और उन्होंने बड़ा मंदिर बनवाया किसी एक व्यापारी के हाथ में से। तो इससे पता लग जाता है कि ये जो श्री चैतन्य महाप्रभु जो हमको प्रदान कर रहे हैं एकदम स्पष्ट रूप में क्लियर करते हैं, प्रैक्टिकल चीज है, एवरीथिंग इज सो नाइसली अरेंज, मैथमेटिक्स के बराबर है, देता हम सुधो। और दूसरा प्रकार का ज्ञान क्या है, वो है अभिधेय ज्ञान। ये अभिधेय ज्ञान जो है उसको श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी पाद के संवाद में स्थापना की। तो रूप गोस्वामी पाद कौन हुए? अभिदेव ज्ञान का आचार्य। और अभिदेव ज्ञान के जो देव कौन है? राधा गोविंद जी के, क्योंकि रूप गोस्वामी जो राधा गोविंद जी का बंधन बना, राधा गोविंद जी के प्राणधन है। जैसे दिव्य बृंदारण्य कल्प द्रुमदा श्रीमद रत्नाधार सिंहासन स्थौ श्रीमद राधा शील गोविंद देवो कष्टालि सेवा नमस्कारामि, मैं श्री राधा गोविंद जी को सेवा कर रहा हूं। कहा श्री राधा गोविंद जी दिव्य बृंदारण्य कल्प द्रुमदा, कल्प द्रुमा कल्प तरु है, कल्प वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे श्रीमद रत्नाधार सिंहासन स्थौ, रत्नों से भरा हुआ एक सिंहासन है, उसके ऊपर श्री श्री राधा गोविंद जी बैठे हैं और मैं स्मरण करता हूं कि मैं आपको हमेशा सेवा में युक्त हूं। उधर एक कार्य है, देयर इज एन एक्टिविटी, संबंध ज्ञान मतलब निष्क्रिय चीज है वो, क्या उसके अंदर हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं ये जो है ये भौतिक संसार दुख है और शाश्वत है, कृष्ण मदन मोहन है, उनकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है, ये केवल इंटेलेक्चुअल और हमारा अंतरंग की मनन है। लेकिन वो सब जानने के बाद कुछ करना पड़ेगा, वो क्या करना है? सेवमानो स्मरामि, ये शब्द जो है सेवमानो मतलब सेवा करना, सेवा क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आपका संबंध क्या है जी, मैं भगवान के साथ मैं दास हूं करके जा। तो इसलिए ये दूसरा अभिधेय ज्ञान प्रकाश अभिधेय ज्ञान अभिधेय तीसरा क्या है वह प्रयोजन, प्रयोजन मंत्र क्या है? श्रीमान रास रसारम्भी वंशी वट तटस्थितः दर्शनमेव स्वने गोपीर गोपीनाथ श्रेष्ठः, श्रीमान रास रसारम्भी वंशी वट तटस्थितः। अभी प्रयोजन में क्या है? प्रयोजन देव कौन है? राधा कृष्ण। और प्रयोजन आचार्य जो है वो रामानंद राय नहीं है, क्योंकि रामानंद राय ने एक आचार्य के रूप में एक अपने आप को स्वीकार नहीं किया, आचार्य के रूप में उन्होंने कार्य नहीं किया, वो एक साधारण सा एक श्री चैतन्य महाप्रभु के संगी के रूप में कार्य किया, इसलिए उनको आचार्य नहीं बोला जाता है, प्रयोजन आचार्य कर दे। रामानंद राय संवाद में भले ही श्री चैतन्य महाप्रभु प्रयोजन ज्ञान व्यक्त किया, ये रघुनाथ दास गोस्वामी जो है हमारे प्रयोजन आचार्य, ही इज अ प्रयोजन आचार्य। अरे प्रयोजन देव कौन है? प्रयोजन तत्व के वो है राधा गोविंदा। तो इसने हम तीन आचार्य, तीन देव और तीन वेदों के तत्व, संबंध अभिधेय प्रयोजन, सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी, राधा मदन मोहन जी, राधा गोविंद जी और राधा गोविंद, इसको मन में बिठा लेना चाहिए। एक प्रकार का एक मैप, वेदिक साहित्य का मैप, आपको संबंध ज्ञान प्राप्त करना है, क्या करना है? राधा मदन मोहन जी से प्रार्थना करो, मदन मोहन जी से प्रार्थना करते हुए किनका शिक्षा प्राप्त करो, किनके संवाद पढ़ो? सनातन गोस्वामी संवाद पढ़ो, ठीक है। अभी अभिधेय ज्ञान को प्राप्त करना है, प्रार्थना किससे? राधा गोविंद जी से प्रार्थना करेंगे, हे गोविंद जी आपकी सेवा सेवा में लगाइए हमको। और किनका संवाद पढ़ेंगे हम? रूप गोस्वामी का संवाद, रघुनाथ दास को सनातन प्रार्थना करते हुए हम रामानंद राय से संवाद करेंगे। तो इस प्रकार संबंध अभिधेय प्रयोजन है, तीन तत्व बार 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 वेदों में आता है, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन को सनातन संवाद में इस बात को स्पष्ट रूप से बताते हैं कि वेद है तीन तीन कहे वस्तु कहे संबंध अभिधेय प्रयोजन, भगवान संबंध भक्ति अभिधेय प्रेम प्रयोजन। तो ये सारे वेदों में ये तीन बातें कहा गया, इसके बारे में हमने अभी तक जाना है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में थोड़ा बहुत कुछ लोगों को हम पढ़ते हैं और चर्चा करते हैं, थोड़ा सा परिचय भी देते हैं। हम तो विस्तृत रूप में इन सब चीजों का व्याख्या हर गौर पूर्णिमा का एक दो दिन पहले करते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार लेने के अंतर के कारण महीने के कारण, क्योंकि एक ऐसा कोर्स चालू हो रहा है, तो एक औपचारिकता के रूप में हम श्लोकों को पढ़ेंगे और कुछ उनका अनुवाद मात्र बताएंगे, क्योंकि कल आपको सबको नोट्स मिलेगा, उस नोट्स में ये सारे श्लोक रहेंगे जो हम लोग रोज उच्चारण करेंगे, 7 दिन इन श्लोकों को उच्चारण करेंगे, थोड़ा बहुत तो याद तो हो जाएगा, कम से कम ये श्लोक देखते देखते पढ़ तो सकते हैं, उतना तो हो जाएगा। तो कल जितने भी लोग आए कल सबको नोट्स मिलेगा, जरा माफ कीजिए वो नोट्स जो है जहां तक हो सके या श्लोक वगैरह जो हिंदी में रहेगा, लेकिन अंग्रेजी में नोट्स मिलेगा, क्योंकि मेरे पास हिंदी वाला कंप्यूटर में हिंदी वाला नहीं है, तो अगले दिन मिलेगा तो जो जो भी चाहिए वो नोट्स ले सकते हैं, हम सबको दे देंगे। तो सारे जितने भी संवाद है संक्षिप्त रूप में पॉइंट वाइज सब कुछ अच्छी तरह से वर्णन किया गया उसके अंदर, तो आप उसको लेंगे तो टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य बुक पढ़ने में भी बहुत आसानी से आप बुक पढ़ सकते हैं और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आजान लंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षु विश्वंभरो द्विजभरो जगदधर्म पातो वंदे जगत्प्रियकरो करुणामयकारो। तो ये चैतन्य भागवत का ये पहला श्लोक है। जैसे आप सबको ये बात को जानना होगा कि श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में हमको ज्ञान प्राप्त करना है तो हमको ये तीन ग्रंथों को पढ़ना होता है। एक है श्री चैतन्य चरितामृत, एक है चैतन्य भागवत और चैतन्य मंगल, ये कभी नहीं भूलना चाहिए। और ये तीन ग्रंथों को लिखने वाले कौन है? चैतन्य चरितामृत का रचयिता है कृष्णदास कविराज गोस्वामी, चैतन्य भागवत का रचयिता है वृंदावन दास ठाकुर, और चैतन्य मंगल का रचयिता कौन है? लोचनदास ठाकुर। तो ये तीन लोगों का नाम और तीन ग्रंथों का नाम को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो ये आजान लंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तन कपितरो, ये श्लोक जो है चैतन्य भागवत का पहला श्लोक है जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु का वर्णन गुणानुवाद करते हुए वृंदावन दास ठाकुर बता रहे कि आजान लंबित भुजो, उनका हाथ जो है श्री चैतन्य महाप्रभु का हाथ जो है वो भूखों के नीचे तक पहुंचता है। कनकावदातो संकीर्तन कपितरो, संकीर्तन कपितरो, ये संकीर्तन आंदोलन के वो पिता है, पिता तो उन्हीं से शुरुआत हुआ है। क्या कमल आयताक्ष, उनके आंग जो है कमल के बराबर है। विश्वम भरो, वो यही नहीं है कि सारे विश्व को वो पोषण करने वाले हैं, उनका नाम है विश्वम भर। विजय भरो, सारे विश्व में सारे ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ है। युग धर्म, ये युग धर्म को प्रचार करने वाले हैं। वंदे जगत प्रिय करो करुणा अवतारो, ये वंदे मैं ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूं जो जगत प्रिय करो, और जगत को प्रिय है या प्रिय वस्तु प्रदान करने वाले वो विशिष्ट प्रेम प्रदान करने वाले हैं, और करुणा अवतारो, और किस प्रकार के अवतार है? करुणा अवतार है, अलग अलग अवतार है। भगवान ने बहुत सारे लोगों को वध किया है, लेकिन खास करके श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार में श्री भगवान ने क्या किया? उन्होंने असुरों को वध किया, असुरों को वध नहीं किया। नमस्त्रिकार सत्याय जगन्नाथ सुखाय च समृत्याय समुत्राय कलत्राय ते नमः सकलत्राय ते नमः। तो इधर वृंदावन दास ठाकुर दुष्ट श्लोक बताते हैं कि नमस्त्रिकार सत्याय, मैं ऐसे व्यक्ति को प्रणाम करता हूँ जो तीनों कालों में सत्य है। तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि वो श्री चैतन्य महाप्रभु के जैसे कुछ संत है, वो आ गए कुछ समय के लिए, आके वो अपना तिरुभाव हो गया, उनका सपना समाप्त हो गया। नहीं, ऐसा नहीं। नमस्ते काल सत्य, तीनों कालों में सत्य रहेंगे, यानी वो पहले भी है आज भी है और बाद भी उनका सत्य रहेगा, उनका अस्तित्व रहेगा, वो भगवान है। तो इसलिए नमस्ते काल सत्य आया जगन्नाथ सुखाय च, वो कौन है? जगन्नाथ मिश्र उनके सुता है। तो मृत्याया सकलत्राया सपुत्राया, यानी उनके पार्षदों का वर्णन चल रहा है, किस प्रकार उनके पुत्र उनके ही कलत्र उनसे सबके पार्षदों के साथ हुआ है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। तो ये चैतन्य भागवत के जो पहले दो श्लोक है, और बाद में चैतन्य चरितामृत के पहले के कुछ पांच श्लोकों को उच्चारण करेंगे, क्योंकि बाकी और 14 श्लोक चैतन्य चिंतन का पूरा मंगलाचरण है। 14 श्लोक नित्यानंदों का वर्णन है, अद्वैत आचार्य का वर्णन है, तो हमने उसको निकाल दिया और इधर हमने ये पांच श्लोक को रचना किया जिसके अंदर श्री चैतन्य महाप्रभु का परिचय दिया गया है। तो चैतन्य चिंतामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि वंदे गुरु नीश भक्ता नीशावकार कांत प्रकाशन तत्सिद्धि कृष्ण चैतन्य सन्निकम, सबसे पहले प्रणाम करते गुरु, वंदे गुरु, मैं सारे अपने गुरुओं को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उनके प्रणाम के बिना, उनके आशीर्वाद के बिना कोई शुभ कार्य होने वाला नहीं है। इसलिए सबसे पहले गुरु को प्रणाम करते हैं। वंदे गुरु ईश भक्तान, और सारे जितने भी ईश के यानी ईश्वर के जो भक्त है, कृष्ण के भक्त है, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। ईशम ईशावतार ईशम, खास करके भगवान स्वयं उनको प्रणाम करता हूँ, श्री चैतन्य महाप्रभु को। ईशावतार का जो ईश के ईश्वर के यानी भगवान के अवतार कौन है, उनके अवतार अद्वैत आचार्य को प्रणाम करता हूँ। तत्प्रकाशांश तत्शक्ति, तत्प्रकाश कौन है, श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकाश कौन है, भगवान के प्रकाश कौन है, अरे भगवान है नित्यानंद प्रभु, उनको प्रणाम करता हूँ। और तत्शक्ति, श्री चैतन्य महाप्रभु शक्ति कौन है, कृष्ण का शक्ति कौन है, श्रीमती राधा रानी, वो कैसे आए, किस रूप में आए, वो आए स्वरूप दामोदर के रूप में या उनके गदाधर पंडित के रूप में, उनको प्रणाम करता हूँ। और कृष्ण चैतन्य सत्यगम, और वही श्री चैतन्य महाप्रभु, और ये पांच स्वरूपों में वो प्रकट हुए, श्री चैतन्य नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिवा, इन रूप में प्रकट हुए, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। वंदे कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदित गौड़ोदय पुष्पवंत चित्रवंतो तमोदो, श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद गौड़ प्रदेश से ऐसा एक चंद्रमा जैसा उत्पन्न हुए, जैसे चंद्रमा उत्पन्न होते सारे अंधकार को दूर कर देता है, तो वैसे श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद सारे जगत के अंधकार को दूर करने के लिए वो दोनों प्रकट हुए। अंधकार क्या है, धर्म के नाम पे अधर्म का प्रचार हो है, अंधकार धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनको अंधकार के बराबर तुलना किया गया। तो ये उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है, या जो हम ब्रह्म परमात्मा और भगवान के रूप में जो वेदों में घोषणा किया गया है, ये ब्रह्म है, ये परमात्मा है, भगवान है, तब तो वेद के लोग उसके वर्णन किया जाता है, जैसे भागवत में वर्णन किया गया है कि वदन्ति का तत्व तत्व में ज्ञान ब्रह्म परमात्मा थी भगवान है शब्द थे, ये जो ब्रह्म है यही परमात्मा ये भगवान है, कौन है जो कोई और नहीं, यही श्री चैतन्य महाप्रभु है, जो रास्ते के ऊपर हम लोग देख रहे हैं दरिया ग्राम में वो हाथ उठाते हुए नाचते हुए सबको नचा रहे और सबको कृष्ण कीर्तन में मग्न करा रहे, ये और कोई और है नहीं, ये वही है साक्षात ब्रह्म जो उपनिषदों में वर्णन किया गया, इसलिए बोला जाता है कि एतद्वैतं ब्रह्मोपनिषदे तदप्यस्य धनुभा यान्तर्यामि पुरुषः इति स्वस्यांश वैभवः ऐश्वर्यपूर्णो यैः भगवान् स्वयं वयं न चैतन्या कृष्ण जगति परतत्त्वम् न चैतन्या परतत्त्वम् उससे परे और कोई तत्व नहीं है, क्योंकि जो ब्रह्म करके उपनिषदों में वर्णन किया गया है ब्रह्म कोई और नहीं बल्कि श्री चैतन्य महाप्रभु का अंग का भाति है, और परमात्मा परमात्मा करके जो लोग बोलते हैं वो कोई और नहीं है बल्कि श्री चैतन्य महाप्रभु है, और श्री चैतन्य महाप्रभु का एक अंश मात्र है परमात्मा, और भगवान कोई और नहीं बल्कि श्री चैतन्य महाप्रभु है, सर्वेश्वरी पूर्ण युक्त श्री चैतन्य महाप्रभु है, तो इसलिए वही श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है करके इन श्लोक में स्थापना करने के बाद तब श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, इसका वर्णन करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार लेने का कारण क्या है, वर्णन करते बोलते हैं कि अनर्पित चरण चिरा कारण अवतीर्ण कलो, अनर्पित चरण चिरा ऐसा वस्तु प्रदान करने के लिए जो आज तो कोई अवतार ने प्रदान नहीं किया, ऐसा वस्तु को प्रदान करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया है। अर्पित चरण चिरा कारुण्यावतीर्ण कलो, खास करके कलयुग के लोगों को ऐसा वस्तु प्रदान कर रहे हैं जो आज तक प्रदान नहीं किया है, आध्यात्म में सर्वोच्च चीज है, क्या है वो, अर्पित चरण चिरा कारुण्यावतीर्ण कलो समर्पयितुम् उन्नतोज्ज्वल रसाम्, उन्नतोज्ज्वल रस जो सर्वोच्च रस है, जो आध्यात्म में सर्वोच्च है, ऐसा चीज को जो निकृष्ट लोगों को प्रदान करने के लिए आए, इसलिए वो कौन है, कारुण्या, इसके श्री चैतन्य महाप्रभु को वर्णन करते हुए वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या बोलते हैं, अद्भुत कारुण्य, अद्भुत वदारुण्य, अद्भुत दया, आज तक इस प्रकार की कारुण्य और वदारुण्य तक कोई भी अवतार प्रकाशित नहीं किया है, तो बोलते हैं कि हमेशा वो स्फूर्त बता रहे हैं, हमेशा मेरा दर्शन प्राप्त हो मेरे हृदय में, तो ठीक है भाई आपने तो बोला कि श्री चैतन्य महाप्रभु आए सही बात है सबको प्रदान करने के लिए, असल में वो है कौन, आप बोलते हैं कृष्ण है लेकिन उनका वर्ण अलग है, ऐसा कैसे हो सकता है कि अस्तित्व तो वास्तविक परिचय दिए तब तो देखो कृष्ण चेतन मार्ग में होता है। तब कृष्णा तुलाद गोस्वामी बोलते हैं कि राधा कृष्ण प्रणया विकृत लादिनी शक्तिरस्मा एकात्मनो विप्र देह वेदन विदोतो चैतन्यात्म्यं मधुर प्रकटं मत तयम मां चैक्यवाप्तम राधा भाव यदि स्वरितम नौमि कृष्ण स्वरूप। मैं ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूं जो कृष्ण के अवतार नहीं है बल्कि वो कृष्ण ही है, कृष्ण के स्वरूप है, नौमि कृष्ण स्वरूपम। अभी वो कृष्ण स्वरूप है तो अभी रंग इस प्रकार क्यों है, क्योंकि वो राधा रानी का भावना को स्वीकार करते हैं। श्री चैतन्य राधा भाव द्युति सुवलितम और दोनों मिक्स होके श्रीमती राधा रानी का कृष्ण राधा रानी का भावना को और उनके जो अंग कांति है उनको स्वीकार करके सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम, ऐसे कृष्ण स्वरूप को मैं प्रणाम करता हूँ। अस्तित्व में राधा और कृष्ण कोई अलग तत्व नहीं है, वो दोनों एक ही है, एक आत्मनो भूमि पूरा है वेदम गतो, तो हमारे सामने वो दो रूप में प्रस्तुत शक्ति और शक्तिमान है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं, लेकिन फिर भी हमारे सामने वो दो रूपों में प्रस्तुत है राधा कृष्णा मुक्ति में दुख परस अस्तित्व में दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन अधूरा अभी क्या हुआ, अधूरा मतलब अभी वो दोनों राधा और कृष्ण वो ऐक्य दोनों एक हो गए। वो कैसे एक हो गए, श्री कृष्ण ने राधा रानी का जो अंग कांति है और उनका जो भावना है उन्होंने स्वीकार किया। तब कृष्णदास कविराज को सर बता दे ये सब तो ठीक है, लेकिन फिर भी आप एक बात को ध्यान में रखो कि श्री चैतन्य महाप्रभु तो हरिनाम को प्रचार करने के लिए, सबको हरिनाम प्रदान करने के लिए, सब जीवों को उद्धार करने के लिए, कलयुग के जीवों को सबको आध्यात्मिक सर्वोच्च देने के लिए तो जरूर आए हैं, फिर भी उनका एक अंतरंगिक कारण है आने का। वो अंतरंगिक कारण एक नहीं बल्कि तीन है, तो अंतरंगिक कारण उनको वर्णन करते हैं। बोलते हैं कि श्री राधया प्रणय महिमा पितृशो वानैव स्वाध्यो येन तद्मदनवा पितृशो वामदीयः सौख्यम चास्य मद अनुगतः कितृशम वेत्ति लोभा तद्भावाढ्य समाजन सचिगत प्रसिंधु हरिंदु तद्भावाढ्य समाजन सचिगत प्रसिंधु हरिंदु सचिगत प्रसिंधु सचिवा श्री चैतन्य महाप्रभु माँ को माँ का नाम है सची, उनके गर्भ को एक सागर के बराबर तुलना किया गया। जिस प्रकार सागर में हम देखेंगे तटके पर देखेंगे वो चंद्रमा उसका उदय होता है, तो वैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु वो सची गर्भ के जो सिंधु है उसके अंदर उदय हुए। इस प्रकार क्यों उदय हुए बोला जाता है उसका तीन कारण, ये तीन कारणों का मुख्य चीज क्या है, लोभ हुआ। किसका लोभ हुआ, वो जानना चाहते हैं कि जी राधया प्रणया महिमा पितृशो वान हुआ, पितृशो मतलब क्या किस चीज के बारे में जानना चाहते हैं, राधा महिमा प्रणया महिमा, राधा रानी कृष्ण से प्रेम करते हैं, कृष्ण जानना चाहते हैं कि राधा रानी मुझसे इतना प्रेम करते हैं, मैं जानता हूं कि मैं उनसे प्रेम करता हूं वो मुझसे प्रेम करते हैं, ऐसा लगता है कि मैं जितना राधा रानी से प्रेम करता हूं राधा रानी मुझसे ज्यादा प्रेम करती है, मैं ये जानना चाहता हूं, मैं अनुभव करना चाहता हूं राधा रानी मुझसे कितना प्रेम करती है। और दूसरी बात यह है कि स्वाध्यो येन कृतमदरिमा कितृशो वामदीयः स्वाध्यो येन ऐसा कौन सा चीज है जिसकी वजह से वो इतना आकर्षित हो रही है, मैं राधा रानी के आकर्षित हूँ और राधा रानी मुझसे आकर्षित है, मेरा अंदर ऐसा कौन सा चीज है जिसकी वजह से वो इतना मुझे आकर्षित है, इतना मुझे प्रेम करती है, क्यों है, व्हाई व्हाट इज देयर इन मी, मेरे अंदर क्या हो जानना चाहता हूँ। तीसरा क्या है, सौख्यम चास्य मद अनुगतः कितृशम वेत्ति लोभात, तीसरी बात यह है कि मैं राधा रानी के संग में बहुत आनंद अनुभव करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि राधा रानी जो है मेरे संग में और ज्यादा आनंद अनुभव करती है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ राधा रानी कितना मेरे संग में आनंद करती है, आनंद अनुभव करती है। तो ये तीन बात, ऐसा लगता है तीनों बात एक ही जैसा है, लेकिन असल में जो नंबर थोड़ा सा अंतर है, एक है ये जानना चाहते हैं कि श्रीमती राधा रानी उनसे कितना प्रेम करती है, प्रेम का महिमा। दूसरी बात कृष्ण जानना चाहते हैं कि उनके अंदर ऐसा क्या चीज है जिसकी वजह से राधा रानी उनके प्रति इतना प्रेम कर रही है। तीसरी बात श्रीमती राधा रानी जब कृष्ण को इतना प्रेम करती है, कृष्ण जानना चाहते हैं कि उनको कितना आनंद प्राप्त होगा। एक है सबसे पहला बात यह है कि राधा रावया प्रेम महिमा, राधा रानी का प्रेम का महिमा जानना चाहते हैं कृष्ण, वो कितना कृष्ण से प्राप्त प्रेम करती है। दूसरा वो क्यों प्रेम करती है, उसके अंदर ऋषि के अंदर क्या है वो कृष्ण जानना चाहते हैं, जिसकी वजह से राधा रानी उनसे प्रेम कर रही है। उस प्रेम में राधा रानी कितना आनंद अनुभव कर रही है वो बात को जानना चाहते हैं। इन बातों को जानने के लोग उत्पन्न हुआ तब श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण उत्पन्न हुए। तब ये सब बातें तो खैर बहुत गहरा चीजें हो गया, लेकिन सरल रूप में बताइए भाई एक बात कि श्री चैतन्य महाप्रभु क्यों आए, उस बात को सारमठाचार्य बताते हैं। बोलते हैं कि वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षात्मक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारे रूपां मुदरीय स्तंभम प्रपद्ये। ते वैराग्य विद्या असल में हमारा विद्या जो है वास्तविक विद्या जो है भक्ति तो करते हैं, लेकिन असल में भक्ति क्या होता क्या है वैराग्य विद्या। इट इज नॉट डिफरेंट बाय वैराग्य विद्या। अगर असल में कोई वहां आप जाएंगे हरे कृष्ण को जप करते हुए, कोई एक गांव के में कोई ऐसा पुराना हजारों साल से चलता हुआ है कोई ऐसे तथाकथित संप्रदाय एक साधु का संप्रदाय है, तो उनके पास जाएंगे बोलेंगे हमको आश्रम में रुकना है, वो लोग आपसे पूछेंगे कि आप कौन है, तो आप बोलेंगे हम हरे कृष्ण वाले, तो बोलेंगे आपका परिचय दो, आप कौन से पंथ के हो, आपका सिद्धांत क्या है, तो आप बोलेंगे हम तो बस हरे कृष्ण वाले हैं, प्रभुपाद जी के हमारे गुरु है, तो बोलेंगे वो सब ठीक है आपका पंथ क्या है, उसके हमको क्या बोलना चाहिए, हमारा पंथ है वैराग्य पंथ, निवृत्ति मार्ग वैराग्य पंथ। हाँ तब वो समझ जाएंगे ठीक है आप हरे कृष्ण वाले ना, हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं मतलब इसका मतलब भक्ति कर रहे हैं, भक्ति मतलब वैराग्य पंथ का वैराग्य पंथ का निज भक्ति होगा वैराग्य विद्या निज भक्ति होगा शिक्षा तब एक पुरुष पुराण वही पुरातन पुरुष श्री कृष्ण किसके लिए आए, शिक्षार्थम एकम लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए उनका एकमात्र अर्थ यही था कि आगे लोगों को मैं शिक्षा प्रदान करूं। शिक्षार्थम एकम पुरुष पुराणा श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपा मुदरे स्तंभम प्रपद्ये। श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी वही कृष्ण कृष्ण चैतन्य के रूप में उस शरीर को धारण किए और कृपा मुदरे वो कौन है, वो कृपा का मुदरे शरीर धारी तमाम प्रपद्ये। वैसे श्री चैतन्य महाप्रभु में कृष्ण प्रेम प्रदाय थे कृष्ण के प्रेम को प्रदान करने वाले हो, कृष्ण आया कृष्ण ही हो, कृष्ण चैतन्य रूप के नाम ने गुरु नाम धारण करके आप आए हो, इनका रूप उस समय का इन श्लोक को वर्णन करते हैं। पंच तत्व आत्मकम निष्ठम भक्त रूप स्वरूप भक्ता अवतार भक्ता के नाम भक्त शक्ति कम यही पंच तत्व प्रणाम कम करते जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत दास श्री गौर भक्तवृंद। ये पंच तत्व प्रणाम मंत्र में क्या है, उनका नाम का वर्णन है पांच लोगों का, कृष्ण चैतन्य नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य दादर पंडित श्रीवास ये पांच लोगों का नाम है। यही पांच लोगों का जो टेक्निकल नाम ये सब टेक्निकल मतलब उनका तत्व के रूप में विश्लेषण करना है यही पंच तत्व आत्मा विश्व ये भी पंच तत्व प्रणाम है। एक है नाम का प्रणाम है दूसरा है तत्व का प्रणाम है। पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपम श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, दूसरे कृष्ण कैसे आए भक्त रूप में आए भक्त रूप एक है, स्वरूप कौन है भक्त स्वरूप कौन है नित्यानंद प्रभु है, भक्त अवतार कौन है दादा पंडित आचार्य अद्वैत आचार्य है, और भक्त शक्ति कौन है वो है दादा पंडित, और भक्त आख्यम और कौन है वो है श्रीवास ठाकुर। तो इस बात को जानते हैं और आज जैसे आप दोपहर को क्लास में सुने थे कि कृष्ण वर्णन निशा कृष्ण सांगो कांगास्त्र पाशतम यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजन्ते स्मय दशा यज्ञ संकीर्तन प्राय बुद्धिमान लोग जो सुमय दशा है वो सब लोग उस भगवान के स्वरूप को प्रार्थना करते हैं वो पूजा करते हैं वो जो कृष्ण वर्ण है हमेशा कृष्ण का नाम उच्चारण करते रहते हैं कृष्ण का नाम को वर्णन करते हैं कृष्ण का नाम उच्चारण कराते हैं और कराने की शक्ति प्रदान करते हैं। वैसे जो कृष्ण का जो स्वरूप है जो हमेशा गौर वर्ण धारण किए हुए हैं और अपने सांगोपांगास्त्र प्राप्त अपने संकीर्तन में क्या पासों के साथ आते हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासन गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। मैं आज इन श्लोकों को संक्षिप्त में एक बार पढ़ा और उनका मतलब इसलिए बताया क्योंकि हम हर रोज इसको उच्चारण करने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि पिछली बार हम जुम्मे में इन श्लोकों को उच्चारण कर रहे थे रोज, तो कुछ लोगों को ऐसा लगा था उच्चारण करना भी नहीं हो पा था, बाद में तो मतलब ही मैं मान पड़ रहा था। तो मैंने सोचा कि उस प्रकार का विषय नहीं होना चाहिए जिससे हमने आज इस प्रकार किया, तो कल आपको ये नोट्स मिलेगा। और रोज हम ये जो श्लोक हमने आज में जो चर्चा किया है उस लोगों को रोज उच्चारण करने वाले ताकि कुछ तो याद हो जाए आपको। दूसरी बात यह है कि रोज हम शेठ गोस्वामी आश्रम को भी हम चर्चा करेंगे या उनका भी उच्चारण करेंगे उनका भी गाएंगे ताकि ये भले ही श्री चैतन्य महाप्रभु संवाद में पांच लोगों में से खाली दो ही गोस्वामी है लेकिन रूप और सनातन शिक्षा में अधिकांश हमको संबंध विजय ज्ञान प्राप्त होता है इसलिए शेठ गोस्वामी आश्रम भी गाएंगे। तो अगर रोज 8 बजे आएंगे तो मैं शेठ गोस्वामी आश्रम गाएंगे और इन श्लोकों को उच्चारण करेंगे और कल हम रूप गोस्वामी बात का संवाद करेंगे। रूप गोस्वामी संवाद में अभिनय शिक्षा प्राप्त होता है और परसों सनातन गोस्वामी का संवाद करेंगे और एक थोड़ा सा 2 या 3 दिन हो सकता है क्योंकि उसके अंदर बहुत लंबा थोड़ा चलता है सनातन गोस्वामी में संबंधित ज्ञान में उसके अंदर बहुत गहरा चीजें हैं बातें। उसके बाद हम इनका प्रकाशान संस्था के साथ सारा भट्टाचार्य के साथ और अंत में रामानंद राय संवाद को हम करने वाले हैं। तो ये हमारी चर्चा की शैली रहेगी। आपके पास हम कल नोट्स देंगे तो आपको हर रोज ये नोट्स लाना है ताकि उसके अंदर ही सब कुछ प्राप्त हो जाए जो भी हम डिस्कस करेंगे उसी में से पॉइंट्स रहेगा। ठीक है तो आज के लिए हम इधर समाप्त करेंगे। तो कोई किसी का कुछ प्रश्न वगैरह है तो पूछे आपका सिलेबस एनी क्वेश्चंस करना संबंध आचार्य कौन है प्रकाशान सर इस संवाद में हमको क्या प्राप्त होता है? ओह वेरी गुड कोई याद नहीं है नाइस। और ये श्लोक किसने रचना किया? वैराग्य विद्या निज भक्ति होगा। ओके सारे बड़े सारे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम दायते और प्रयोजन मंत्र क्या है? प्रयोजन प्रणाम क्या है? तो इस प्रकार याद रखेंगे तो आप देखो कि बस बहुत मधुर रहेगा हमारा भक्ति का जीवन। और संबंध विचार किसके चर्चा में प्राप्त होता है? संबंध विचार किसके चर्चा में प्राप्त होता है? सार्वभौम भट्टाचार्य के संबंध में प्राप्त होता है। ठीक है। और वृंदावन दास ठाकुर कौन से ग्रंथ को रचना की? चैतन्य भागवत। चैतन्य मंगल ने किसको रचना की? किसने रचना की? लोचन दास ठाकुर। और श्री चैतन्य महाप्रभु का माँ का नाम क्या है? पिताजी का नाम क्या है? इसको बोलिए मत खाली हाथ उठाएंगे और उनसे पूछेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार लेने का 3 अंतरंगिक कारण क्या है? कौन हाथ उठाएंगे? ओके अभी ना ओके वो जानना चाहते थे कि कृष्ण जानना चाहते थे कि राधा रानी उनसे कितना प्रेम करती है, एक ऐसा कौन सा चीज है मेरे अंदर जिसकी वजह से उतना मुझे प्रेम करती है, क्यों प्रेम करती है इतना सारा। इस प्रेम में वो कितना आनंद को अनुभव कर रही है, हाउ मच हैप्पीनेस शी इज एक्सपीरियंसिंग इन एसोसिएशन विद मी।
Did
Sri Chaitanya Mahaprabhu did he find out the answer? Both of the question. So when Krishna came as Chaitanya, ऐसा वर्णन किया जाता है, इनका प्रश्न यह है कि चैतन्य महाप्रभु क्या उन्होंने सच में वो ये जो प्रश्न है उनको मन में उत्पन्न हुआ, इनको प्रश्न ही नहीं बल्कि इनको दो उत्पन्न हुआ। He had the greed to know how much Radha Rani loves him. He had the greed to know what is there in him by which she is loving him so much. He had the greed to know. Lobha, veti lobha. That is the word is. So his greed was satisfied. But still, it is said, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Krishna is playing the role of Radha Rani as Sri Chaitanya. This is why Sri Chaitanya Mahaprabhu group mein Radha Rani ka ek भाग निभा रहे हैं, एक रोल मतलब एक वो राधारानी जैसा वो व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन स्वयं राधारानी उनको सोचते इष्ट तो गए मेरा रोल निभाने के लिए, लेकिन बराबर निभा रहे हैं कि नहीं वो देखने के लिए स्वयं राधारानी वो गदाधर पंडित के रूप में है। सो द इंटरनल मीनिंग द आचार्य एक्सप्लेन how Srimati Radharani was observing Sri Chaitanya as the Gadadhar Pandit, always looking at Chaitanya in a very confused mood. Take away, are you playing my role properly or not? So, Sri Chaitanya Mahaprabhu and Gadadhar Pandit have many leelas. Those leelas are the bahirgi group mein aap deh sakte ho, Gadadhar Pandit, Sri Chaitanya Mahaprabhu ke daas ke roop mein nana prakar antari kalam kar rahe ho, aur Uttar Vasa, bahut sare leelas hain. लीलाओं के पीछे आचार्य वर्णन करते हैं कि गदाधर पंडित का उद्देश्य है कि राधा रानी गदाधर पंडित आवेश राधा रानी चित्त आवेश राधा रानी। सो श्रीमद राधा रानी गार्डिंग कृष्ण एंड सीइंग वेदर ही इज प्लेइंग हर रोल प्रॉपर्ली अपॉन हिम। सो श्री चैतन्य महाप्रभु डेफिनेटली सैटिस्फाइड हिज ग्रीड बिकॉज राधा रानी हरसेल्फ वाज मॉनिटरिंग वेदर ही इज परफॉर्मिंग हर रोल प्रॉपर्ली अपॉन हिम। तो ये भी बहुत सारे इसके अंदर पुण्य विचार है वैष्णव आचार्य होंगे, इन सब विचारों को हम गौर पूर्णिमा का जो 14 तारीख है वो उस दिन या उस दिन के पहले रविवार को या कभी ना कभी शेड्यूल बनाएंगे कल का बताएंगे, तब इनका जो डिटेल चर्चा है जो हर साल करते ही है वो डिटेल चर्चा जरूर करेंगे। ठीक है, तो आई होप नो क्वेश्चंस। कल हम मिलेंगे रूप गोस्वामी का चर्चा करने के लिए, उनका संवाद को यानी हम समाप्त करते हैं, तो सभी लोग जरा कल टाइम पे आएगा कमिट टाइम, इसलिए हम आपकी सुविधा के लिए 8 बजे आते हैं, नहीं तो 7:30 से 9 रहते हैं, इसलिए आपकी सुविधा के लिए जो कि देर में आते हैं तो 8 बजे से 9:30 बजे तक का है। और फिर प्लीज कृपा हरे कृष्ण
next study maybe Chaitanya Mahaprabhu is not going to come as per CC.
he comes only once, like Sri Krishna. So, Vishnu ki kya, like Sri Krishna, inka guru ho jayega
replica.
Band kar do.